वो बन रहा था उस वक्त की वहां सब कोई पहाड़ उठा उठा कर लेकर आते थे, तो ये जो गोवर्धन पहाड़ है इसको हनुमान जी ले रहे। तो फिर महाराज की आज्ञा होगी कि पहाड़ वहां का वहां ही रख, तो हनुमान जी इसको रखने लगे। तो फिर ऐसो गोवर्धन ने कहा, रहे भाई हमारे साथ में ये इकरार था कि राम का दर्शन करूंगा, तो हमारे को यही रख देता। तो हनुमान ने क्या देरी थी, बोला तुम ठहरो अभी महाराज की आज्ञा लेकर आऊ। हनुमान जी दौड़ करके और सब जो की आए राम के पास। महाराज इस प्रकार से एक पहाड़ समय इकरार करके लाया था और वो मुझको बाध करता, बोले तुम कह दो उसको कि कहीं ना उतार में हम तुमको दर्शन देते। आगे कह दिया कि महाराज विलंब होगा, दर्शन दोगे आपको। तो बोले ठीक है। तो भगवान ने गिर धारण किया, गिर दरवाजे। हनुमान जी ने कितने पार उठाए, उसको कोई गिर दर नहीं कहा, उसको बड़े बड़े पार उठाए। तो ये पार तो हनुमान का लाया हुआ, इसलिए ये कोई अनोखी बात नहीं, भगवान ने उठा लिया तो क्या हनुमान ही उठा लाए। और भगवान हम लोगों को जो एक प्रकार से ये रोशनी देते हैं, हमारी सेवा करते हैं, समझो कि अमृत के समान गंगा जल देते हैं, वर्षा का जल देते हैं, हवा देते हैं और एक पैसा भी लेते हैं, बिल्कुल मुफ्त के जिसके। और भूमि पर ये कहीं जाकर जंगलों में ध्यान लगाओ, कोई लाभ नहीं, और सब जगह पैसा देने से चीज मिले। तो ये जो भगवान की दया है ये लौकिक दया, क्योंकि जब वो पैदा किया तो उसको सबसे देनी होगी। कैदी को भी एक प्रकार से राजा देता है। तो इसी प्रकार से भगवान राम के विषय में भगवान श्री रामचंद्र जी ने समझो कि बहुत से राक्षसों को मार डाले, तो ये कोई अलौकिक बात नहीं, क्योंकि हनुमान ने भी बहुत से राक्षस मार दिए, राम ने भी मारे हनुमान ने, आगे लिखा हुआ। तो थोड़ा अलौकिक काम कौन सा हुआ कि भगवान राम जब वापिस आए और समझो कि सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान के दर्शनों के लिए व्याकुल हो गई, उलट गई। उस वक्त में भगवान देखा किसे तो आगे मिलू, किसे बात में मिलू, सबका प्रेम समाप्त। तो अमित रूप प्रगति क्षण एमाई, और यथा योग मिले सवई गोसाई। ये उनका अलौकिक कि एक क्षण के बीच के मां समझो उतने रूप धारण के लिए अपनी विधि जितने मिलने के लिए आए थे, हम सबसे एक क्षण के बीच के मां यथा योग मिले, जैसे राग जो था उसे वैसे सुख मिले। तो ये हर एक आदमी नहीं करता, तो ये उनकी आत्मा के कल्याण का एक साधन है। तो ये है सो भगवान का अलौकिक कर्म। इसी प्रकार से थी और जितने कर्म है, जैसे पूतना थी और पूतना को मार के उसकी मुक्ति कर दी, एक पूतना नहीं, प्रभास क्षेत्र के बीच में यादव कुल का जब नाश हुआ तो बलदेव जी श्री कृष्ण जी ऐसे माथे मारने के लिए शिव का संवादा करती। तो बोले आपने महाभारत के युद्ध में ऐसा नहीं किया, बोले ये थोड़ा पक्षपात के पक्षपात के शहीद वो अपने थे ना, उनको पहुंचाना भगवान परम राम को कि जिस कुल में भगवान पैदा हो उस कुल का तो उद्धार करना चाहिए। महात्मा जहां पैदा होते आता है वो कुल का उद्धार कर देता है, तो भगवान की महिमा की तो अधिक होनी चाहिए। तो पुण्य पवित्र निंदन नहीं करता था, बस उन पुण्यवती इच्छा ने अपार संबित सुख साग रहीसमिन लीनिंग परे ब्रह्मनिश्चित है। जो परब्रह्म परमात्मा में जिसका सिद्धिलीन हो गया है और जिसके आनंद का सागर की जो जिसके आनंद का पार नहीं है, उसका कुल पवित्र हो जाता है। उनके दर्शन से, भाषण से, सफर से, बात तालाब से उसको जन्म के देने वाली माता एकदम मुक्त हो जाती है, कृतकृत हो जाती है और वो भूमि पवित्र हो जाती है जहां उनके पैर टिकती। असली परमात्माओं के विषय क्या परमात्मा ही तो फिर बात ही क्या। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अवतार दिया और ब्रज की जो मिट्टी में घूमे फिरे और ब्रज की जो रज है उसमें एक प्रकार से मुक्ति वास करती है, इसी के प्रभाव से तो उस रज के ऊपर जो मर जाता है वो ही मुक्त हो जाता है। तो दूसरे तो बात यह है, इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने अयोध्या के वहां जन्म लेकर के वहां बात किया तो अयोध्या के वहां भी वही महात्म है कि वहां भी जो मरता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती। तो ये उनका जो प्रभाव है वो अलौकिक है। भगवान कहते हैं बंदरों को कि ये जो तुमको सर्जू दिखती है ना, इसमें स्नान करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है और आगे ये जो पूरी दिखती है ये अयोध्यापुरी है, मेरी जन्मभूमि है, ये समझो कि आपने मुक्ति के देने वाली है। तो भगवान की जो सर्जू, भगवान की जो योद्धा, सभी मुक्ति के देने वाली। तो ये जो है उनका प्रभाव भगवान का अलौकिक। मतलब भगवान श्री कृष्ण जी ने तो अपने सबका जो आर्य की धार से सबको समझो कि आपने काट काट करके के सबको अपने धाम में पहुंचा दिया। राम ने बोले इन्होंने आर्य की धार से, उन्होंने सरजू की धार से पूछा और दोनों ही वो आर्य जी और वो सरजू की, बोले कि जो हमारे साथ में चलो और सरजू में स्नान करो। ये कहां था, ये वाल्मीकि रामायण के। तो वाल्मीकि रामायण के मां जिन्होंने सरजू में स्नान किया उनका शरीर तो सरजू में रहा और उनकी आत्मा साकेत लोक थी। तो ये जो भगवान का जो काम है ना, ये अलौकिक काम है। ये जो लौकिक काम है तो बोले ठीक है, ईश्वर के विषय में तुम समझ गए, महात्मा के विषय में समझाओ कि ये महात्मा है। अरे क्या महाराज, आप तो साक्षात महात्मा हो, मेरा संतान को नहीं हुए इसलिए मैं आशीर्वाद दे दू कि तुम्हारा लड़का होगा। और महात्मा हंसते हैं कि देखो कैसा मूड है, पर क्या उपाय एक प्रकार से उसकी वो लालसा तो आपने कुछ न कुछ आपने उसको निमित्त बतला दिया कि तुम ऐसा भजन कर, ध्यान कर और लड़का उसके हो गया। तो कहता है ये लड़का मुझको महात्मा ने दिया, असली महात्मा थे तू जो उनको लड़का दे। अब दूसरा बुढ़ा साहब हमारे उनको कोई हमारे थाइसिस की बीमारी है, ग्रेन की बीमारी है, उसके वास्ते आप बतला दो, आप चाहे रात की चूंटी दे दो ना तो वो भी हमारे लिए समझो अपने काम करेगी। इस पर एक कहानी आ गई आप कि एक शेर थे बढ़िया, वो बड़ा भगवान का भक्त था, दिन रात खूब भजन ध्यान करना, माला फेरना, ध्यान लगाना। तो उसका जो लड़का जो है ना वो बीमार पड़ गया, लड़का माने उसका पोता था, बेटा तो मर गया था और पोता था और वो भी जवान था। तो जो मुनि जी आए बोले साहब बैद दाल लोगों को दिख रहा है, वो तो कहते हैं कि ये बीमारी जो है असाध्य। तो बोलो भी जो कुछ तकदीर हो, जो कुछ तकदीर हो बोला चलकर के मिल तो दो। अरे बोलो मिलने से क्या लाभ है, बैदों को डाकरों को दिखलाओ, वे जो कैसे दवाई हो सकते उसका प्रबंध करो और हम जाकर क्या करें। बोला बैद डाकर को दिखा लिया, उस लौकिक दवाई से तो आराम होना नहीं है और कोई पारमार्थिक दवाई से लोग कहते हैं आराम हो सकता है। उन्होंने पारमार्थिक दवाई के वास्ते तो यहाँ एक संत है और वो सुनो कि खाकी बाबा है, रामानंद स्वामी का शिष्य है और शरीर के भस्मी लगा करके रोज धुनि तपता है, अच्छा तपस्वी है। वो तो रात की चूती भी दे दे तो ये लड़के के आराम हो सके। तो दौड़ कर गए उसके पास जाकर लम्बी लम्बी दंडोत करी, बोले बाबा तू, बोले शेठ जी का पोता बीमार हो गया और सेठ जी ने सब उपाय कह लिया, कोई उपाय नहीं है, तो ये बोला कि बाबू तो रात की भी चुंडी दे देनी एक प्रकार से, बाबा एक प्रकार से उपकार कर दो। बाबा ने सोचा कि रे सेठ ने तुम कह दो कि हमारी जो राख में क्या गया है, तुम जो रोज मारा फिरते हो ना, इस लड़के के आराम के उद्देश्य से ये मारा तुम्हारे इस पर फिर दू, तो हम कहते हैं कि लड़का जी जा। अब आखिर की वो बात सेठ को कही, सेठ बोले अभी बाबे की इच्छा नहीं है, तो बोले बाबे की इच्छा नहीं तुम्हारी भी इच्छा नहीं, तुम अभी मारा लेते हो, बोले अभी ये सब बाबे की इच्छा नहीं, उस लड़के की मृत्यु को कौन टाल सकता, तो मारा फेर के जियाना या राख की चुंटी से जिलाना ये अलौकिक जो चीज है उसे से लौकिक लाभ उठाना है, तो ये क्या करना है कि ये हम कह रहे हैं कि भाई हीरे से सुपारी फोड़नी है तो ये भी नहीं देते, हीरा भी लौकिक सुपारी भी लौकिक, एक समझो कि अलौकिक जो चीज है परमात्मा की जिससे प्राप्ति हो सके ऐसी जो चीज है, और उससे कि संसारी काम का मतलब वासना जो है एक ये अपने अज्ञता है, तो महात्मा से कहीं ऐसी बात हो नहीं जावे और हम ये लाभ उठा लेंगे तो वो लौकिक लाभ है, उसकी हम प्रशंसा करें कि भाई वाह महात्मा ऐसा महात्मा, अरे कुछ नहीं मुझे तुम तो समझो कि आपने पार्श को छोड़ करके घूमती अंग की तरफ तुमने ध्यान दिया, ये तो घूमती है उसके आगे पुत्र है धन है तो रुपया है, ये तो नहीं मालूम कितनी दफे तुम्हारे हो गए कितनी दफे जीते रहोगे तो होते रहेंगे, या कुछ भी चीज नहीं, असली चीज जो है वो तो वो है कि महात्मा जी भी मिल जावे तो उससे तो महान चीज जो है वो पारमार्थिक चीज लेनी चाहिए, पारमार्थिक चीज क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति, तो परमात्मा की प्राप्ति का जो विषय है वो उस महात्माओं के मां है, वो महात्माओं का असली प्रभाव है पारमार्थिक प्रभाव है, और उनके मां ये भी प्रभाव है कि वे आशीर्वाद दे जो कुछ दे दे तो सत्य हो जाए, किंतु ये एक प्रकार से उनसे लेना जो है लेने वाले की मूर्ता है वो सैकड़ भाव, तो ये उन महापुरुषों की महिमा की बात कही, ऐसे महापुरुषों की महिमा की बात आती नहीं है शास्त्रों में, दोनों प्रकार का ही महात्मा आता है कि जैसे मूक चंडाल थे तो मूक चंडाल का मकान आकाश में झूलता था क्योंकि महात्मा पुरुष थे, वो महात्मा पड़ा उसमें कहां से आया कि अपने माता पिता की सेवा करी, इसके प्रभाव से भगवान उसके घर के ऊपर ब्राह्मण का रूप धारण करके सिंहासन पर बैठा करते थे, रोज सदा उसके घर पर आप रहते थे भगवान, अरे उसका जब शरीर शांत है तो भगवान के परम धाम को वो चला हुआ, उसके माता पिता और उसके घर के वहां जो जानवर रहते थे वो भी उसके प्रभाव से थी भगवान के परम धाम को चले गए, तो ये महात्मा का असली प्रभाव है जो वहां के जानवर भी मुक्त हो गए, उसकी मुक्ति होने माता पिता की होने तो बात ही क्या है, तो ये उसका अलौकिक प्रभाव पारमार्थिक प्रभाव, अरे उसका जो मकान झूलता था और नरोत्तम ब्राह्मण उसके पास में गए और कहा कि आकाश में होने वाली घटना को मैं जानता हूं, तू क्रोध जो करता है तो तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए, वो बगली नहीं है जो क्रोध करने से भस्म हो जावे, तेरी आकाश में धोती सुखिया करती थी, अपने अहंकार क्रोध के कारण से वो तुम्हारी धोती सुखनी बंद हो गई, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोले इसको कैसे मालूम हो गया, तो मालूम हो गया ठीक है किंतु ये लौकिक की बात, ये कोई मुक्ति की बात नहीं, किंतु उसके घर में रहने वाले सारे जानवर जो मुक्त हो गए ये अलौकिक बात है, तो महात्मा का भी दोनों प्रकार का प्रवाह होता है लौकिक भी और अलौकिक भी, तो ऐसी महिमा उनकी ऐसो बदलाई शास्त्रों के वहां, इसी प्रकार से समझो कि उनके गुणों के विषय में भी एक एक जो बात है सो अलौकिक है, उनकी मां समझो की जो दया है प्रेम है शांति है समता है, एक क्या बहुत से गुण होते हैं और वो लौकिक भी होते हैं अलौकिक भी, और भगवान के बीच के मां भी भगवान जो अवतार लेते हैं लेकर के उनमें उनका जो स्वरूप है और उनके जो चरित्र हैं और उनके जो गुण हैं वो भी इसी प्रकार कैसे देखो ख्याल करते कि जो निर्गुण निराकार सच्चिदान घन जो ब्रह्म है वही सगुण साकार के रूप में आते और आकर के दूसरे लोगों को उनका असली रूप नहीं दिखता, बाहर का जो पर्दा डाले हुए जो नकली रूप है वो ही दिखता है। क्यों कि उनकी श्रद्धा में इसलिए अजोपि सनद्यात्मा भूताना ही स्वरूप प्रकृति स्वाम ज्येष्ठा है संभवाया। भगवान कहते हैं कि मैं जन्मता नहीं किंतु अजन्मा हुआ भी अज हुआ भी जन्मता सा दिखता हूँ, अविनाशी हुआ भी विनाश होता सा दिखता हूँ और ईश्वरों का ईश्वर हुआ भी एक मनुष्य सा दिखता हूँ। कारण कि मैं अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ, प्रकृति को अपने बस में करके के आता हूँ और योग माया से मैं सो प्रकट होता हूँ। इस कारण से मूढ़ लोग मुझको नहीं जानते बल्कि अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा मुंती मान गूढ़ा और मानु चिंतन परम भावम जानंतु मम भूतमेश्वरम मम भूतमेश्वरम परम भावम मैं भूतों का महान ईश्वर ऐसा जो मेरा परम भाव है प्रभाव है उसको ये मूढ़ों का समूह इसको नहीं जानता है। मनुष्य शरीर धारी जो मैं मुझको एक मनुष्य मानते हैं और मनुष्य मान करके मेरा तिरस्कार करते हैं अवज्ञा करते हैं। कौन की मूढ़ों का समूह क्यों करते हैं कि मुझको पहचानते नहीं, क्यों नहीं पहचानते कि मैं उनके लिए अपना एक पर्दा डाल देता हूँ उसमें छिप कर रहता हूँ। नैन प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत है मूढ़ो यमुना भी जानती और लोको माँ मजमद्यम मैं सबको नहीं लिखता। क्यों कि योग माया करके मैं अपने को करके रखता हूँ इसलिए मूढ़ों का समूह जो है मैं जो अज और अविनाशी उसको नहीं जानता। इस प्रकार से भगवान जो आते हैं ना और वो माया का पर्दा डाल लिया तो वो असली जो रूप है उसके अंदर है। और जो श्रद्धालु होते हैं महात्मा जो भक्त होते हैं उनके आगे से वो पर्दा हटा लेते हैं, पर्दा हटा जाए और असली रूप अपना प्रकट कर परमात्मा को जो परमात्मा स्वीकार कर लेता है उसके लिए परमात्मा प्रकट हो जाता है। और जो परमात्मा को परमात्मा नहीं मानता है उस मूड के लिए परमात्मा समझो छिप जाता है। तो वो परमात्मा का जो असली रूप है वो कैसा है कि वो चिन्मय है, सगुण साकार रूप होकर के वो चिन्मय है। जैसे आकाश के वह निराकार रूप से जल है वो बर्फ के रूप में साकार रूप में आ जाता है तो उसे धातु से उसे निराकार जल में और साकार जल में कोई भेद नहीं है, धातु से एक ही है। इसी प्रकार से भगवान का जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद जो रूप है और भगवान का जो सगुण साकार उसमें कोई फर्क नहीं है, वो निर्गुण निराकार ही सगुण साकार के रूप में आते हैं। जैसे दियासराय के मां जो आग है और घसने से वो ज्वाला के रूप में प्रकट हो जाती है तो वो उसका सगुण साकार रूप है अपने समझो अग्नि का, और वो निराकार रूप है जो दियासराय के मां प्रकट होने के पहले जो व्यापक है। तो वास्तु के मां जो व्यापक है वो ही प्रकट होती है और दोनों मिलकर के एक ही है इसलिए उसका जो समग्र रूप जान जाता है अग्नि का वो उसमें फर्क नहीं समझता। ऐसे भगवान का जो समग्र रूप जान जाता है उसके लिए कोई फर्क नहीं प्रतीत होता। तो समग्र रूप की व्याख्या भगवान ने सातवें ध्यान के आरंभ में तो यह कही कि मैं तुम्हारे को अपना समग्र रूप बतलाऊंगा और जगह जगह बतला दिया। सातवें ध्यान के पहले श्लोक में तो प्रतिज्ञा की और जगह जगह बतलाया जगह कहा कि ये तेज सात्विका भाव राजी मैं तो उनते सुते वही जो सात्विक राष्ट्रीय तामसी जो भाव है वो सब असल मेरे से ही है और क्या कहूँ तुम्हारे को बहुमान जन्म नाम थे ज्ञानवान मान पर बद्ध थे और वासुदेव सर्वविधि परमात्मा सुदुर्लभ समझो कि अपने सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यर्थ अव्यर्थ जो भी कुछ है सब समझो कि भगवान कहते मेरा ही स्वरूप है, इस प्रकार समझ करके जो मुझको भगता है वो अति दुर्लभ महात्मा है। और अंश के मां साधि भूतादि देव साधि यज्ञ से ये विदु प्रयाण काले पिजमांते विदु युग अधि भूत अधि देव अधि यज्ञ सही जो बने जा रहे हैं वह मरने के समय मुझको जानता है। तो प्रकार से तो यहाँ क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है कि जो भी कुछ सब परमात्मा को जरूर है। अधिभूत तो नाशवान चीज है, तो कहते जो नाशवान चीज है तो मेरा संकल्प होने से मेरा ही स्वरूप है, और अधिदेव जो है वो भी मेरा ही स्वरूप है, अधियज्ञ वो मेरा ही स्वरूप है। इस वास्ते अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सही एक प्रकार से जो मुझको जाने वो ठीक जाने। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने असली रूप बताया। तो वो भगवान का जो स्वरूप है उसके आगे असली प्रकट हो जाता है, जो भगत है और जो मूढ़ है ऐसा जादू है वहां भगवान छिप जाते। तो इसलिए दूरस्थ संतांति के सतत है, जिनके जिनमें विश्वास नहीं श्रद्धा नहीं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते उसके वास्ते भगवान बहुत दूर है, और जिनके वहां श्रद्धा है विश्वास है भगवान उनको अस्तित्व माने है उनके लिए भगवान सब जगह सदा ही प्राप्त है। तो भगवान उनसे छिप जाते। तो क्या भगवान डरते हैं? बोले डरते नहीं, वो पात्र नहीं उसको देखते नहीं। जैसे समझो सब हम लोगों को सूर्य दिखता है और उन लोग को नहीं दिखता तो उन लोग पात्र नहीं। तो ये भगवान के स्वरूप के विषय के बीच के मां समझो कि उनका जो अलौकिक स्वरूप है वो और लौकिक स्वरूप है वो दोनों बतलाया। जो पर्दे डाले हुए हैं वो लौकिक है, पर्दा तो क्यों कि माया का ना, और माया सत्र तीनों गुणमयी है, और इसे माया को वो तर जाता है कि जो भगवान की शरण हो जाता है कि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया माम प्रबंधनते माया मेता तरंती दे सत्र तीनों गुणमयी। मेरी माया तरने को बहुत कठिन है किंतु जो मेरी शरण आ जाता है वो इसे माया को पार चला जाता है, तर जाता है, लंग जाता है इसको। तो भगवान की जो शरण है वो भगवान का भक्त, तो भगवान का भक्त है उसके आगे भगवान अपने बिल्कुल एक प्रकार से पर्दा नहीं रखते, जैसे अर्जुन के सामने नहीं रखते। अर्जुन को साफ कह दी कि मैं साक्षात अज और अविनाशी हूँ, अर्जुन ने भी ये बात मान ली कि परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र परम भगवान आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो और परम पवित्र हो। अर्जुन ने यह बात मान ली, पर यहाँ अर्जुन कह रहा है कुछ मान रहा है, आगे जाकर जब तक सोना नहीं मानता तब तक भगवान इसका पिंड दी छो। जो कहता है कृषि बचन निष्ठ वो मोह समृति लगता और सब प्रसाद आत्मया चुत है शीतोष निगत संदेह कृषि बचन तुए। जब ये कहा तो बोले ठीक है, मेरा मोह रास हो गया पर मेरे को समझ सकती है जो आपने बात की सब मुझको याद है आपकी कृपा से हे अच्युत। अब मैं शंका रहित हो गया, कोई भी संदेह नहीं रहा और बिल्कुल मौका नाश हो गया। तो तुमने क्या निश्चय किया कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा? बोले अब ठीक समझे सो सेवा का प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मान जो वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्यारा है जो मेरे शासन को माने मेरी आज्ञा का पालन करे। वो सेवक और वो प्रियतम, एक तो प्रिय होता है और एक प्रियतर, अरे होता प्रियतम। तो कहता है कि वो मेरा प्रियतम प्यारा है। स्त्री के सबसे बढ़कर प्यारा कौन है? पति। उसका नाम क्या है कि प्रियतम। तो वो प्रियतम जो है प्रियतम प्यारा वो सबसे बढ़कर, तो भगवान कहते वो मेरा प्रियतम प्यारा है। तो स्त्री के तो पति प्रियतम है, तो भगवान कहते कि मेरे वो प्रियतम है। तो क्या आप उसकी स्त्री हो कि वो लोग मुझको स्त्री माने तो स्त्री और वो मेरी स्त्री बन जाए तो मैं उसका पति। आनंद आनंद पूर्णानंद पूर्णानंद। अपारणु शांतानु घनानु अचलानु ध्रुवानु नित्यानु बोधस्वरूपानु ज्ञानस्वरूपानु आनंदीयम। भगवान विष्णु के जो ध्यान की बात है वो कल के ऊपर रख रहे हैं। यदि भगवान की मर्जी होगी और अवकाश मिलेगा किस समय में कि कल प्रातः काल 4:30 बजे से 5 बजे तक, और इस समय के बीच के वहां समझो कि स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बालकों के लिए, साधुओं के लिए, सबके लिए जो एक बात हो, ऐसी बात विचारी है। तो बात ऐसी है कि बहुत ही सुगम है और सबके काम की चीज है और बड़ी दामी चीज है, और काम में लाने से उसको लाभ भी सो प्रत्यक्ष है। शास्त्रों में बड़ी बड़ी प्रशंसा की है। वो बात है कि आपने जो समय है वो बहुत ही दामी है, और इसने दामी समझ करके बिताना चाहिए, इसलिए नहीं कि एक प्रकार से यो आपने जीवन व्यस्त हो जाए। भगवान तो व्यस्त दिलाए है, अनितम असुकम लोकम नीनम प्राप्त भजस्तमान। ये मनुष्य को शरीर पा करके कि अरे तू नाम भजस्व, तू मेरा भजन करो। कैसा जो मनुष्य का शरीर है कि बड़ा दामी है, और कैसा है कि अनित्य क्षणिक है। तो समय जो मिल गया है उससे और बढ़ने की उम्मीद है नहीं, और इस मनुष्य शरीर को पाकर दिन को तुम सुख समझते हो, वो सुख नहीं है, धोखे की बात है। तो धोखे में फंस करके अपना जीवन जो है बर्बाद नहीं करे। संसार के विषय भोगों को सुख समझ करके या निद्रा और आलस के बीच के वहां आपने जो सोने में आराम मिले इन्हें सुख समझ करके, निद्रा जो है आलस है, प्रमाद है, भोग है, इसने इसके वहां सुख समझ करके इसके लिए जो आपने समय बिताया है वो समय बर्बाद है, यह बात नहीं। शास्त्र के प्रतिकूल वो समय बिताया जावे तो वह को फल जो है बड़े भयंकर। तो इसलिए अपने सावधान रहना चाहिए और समय ऐसे काम में बिताना चाहिए जो कि आप हैं, जो कि 30 वर्ष 50 वर्ष के साधन करने से जो आपने कार्य की सिद्धि नहीं हुई, तो वो काम की सिद्धि अपने आवे 15 दिन में हो जाए, ऐसी चेष्टा कर लीजिए। क्योंकि अधिक से अधिक आपने और गुंजाइश कहा है, आज त्रयोदशी हो गई और स्वामी जी को द्वादशी के दिन यहां से विदा हुए, तो आज को द्वादशी का दोनों दिन गिनने से 15 दिन है। तो बाकी को जो समय है जिसको आपने किस तरह से विभाग करो, तो समय का 3 भाग करना, एक तो सैन्य काल और एक साधन काल और एक व्यवहार काल, 3 ही समय है। साधन क्या, कि साधन तो ये भगवान को जो भजन ध्यान यानी नाम को जप और ध्यान, और यज्ञोपवीत हो तो संध्या गायत्री, और नई यज्ञोपवीत है उनके लिए यज्ञोपवीत है, उनके सबके लिए जप ध्यान सबके लिए, पूजा और पाठ, स्तुति और प्रार्थना।